हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 16 श्लोक संख्या 1 और 2। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम् अध्यैव मे विशतो मानसराजहंसा, प्राणाप्रयाण समये अफवात पित्तये, कंठावरोदन विदो स्मरणं कुतस्त्वा। स्मर्तव्य सततं विष्णुं, विस्मर्तव्यो न जातु चेत्, सर्वे विद्धि निषेधास्युः। एतयोरेव किंकरः आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय, तद्धाम वृंदावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गीनया कल्पिता। श्रीमद् भागवतम् प्रमाणममालम् प्रेम पुमर्थो महा, श्री चैतन्य महाप्रभुर्मृतमिदम् तत्तादहो न परः। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दम् मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जिह्वे पिबस्व मृतुमेतदेव, गोविंद दामो धर्मादवेसि, ब्रजीवसंतं नवनीतचोरं गोपां मधुकूल चोरम श्री राधिकाय हृदयस्य चोरम चोराय गण्यम पुरुषम नमामि श्री कृष्ण श्यामम मनसा स्मरामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत कथाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अथ षष्ठमोऽध्यायः अथ षष्ठदशोऽध्यायः। सोलहवाँ अध्याय। परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस तरह किया। सूत उवाच ततः परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया माही महाभागवत शशासः यथा हि सूत्या मविजात कोविदा समादिशन् विप्रमहत् गुणस्तथा। ततः परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया मही महाभागवत शशासः यथा हि सूत्या मविजात कोविदा समादिशन् विप्रमहत् गुणस्तथा। सूत उवाच। सूत गोस्वामी ने कहा तत्तः तत्तः मतलब तत्पश्चात। किसके पश्चात? जब पांडवों की बाकी सारी फैमिली जो है उसका सामयिक प्रस्थान हो गया उसके पश्चात। परीक्षित जो महाराज परीक्षित उत्तरा और अभिमन्यु के पुत्र थे उन्होंने द्विजवर्य द्विजवर्य मतलब श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा शिक्षया अपने उपदेशों से महीम यानी इस पृथ्वी को ये जो उस पृथ्वी का उन्होंने राज्य किया था। कैसे? द्विजवर्य जितने श्रेष्ठ ब्राह्मण थे उनके उपदेशों के अनुसार उन्होंने पूरी पृथ्वी पर राज्य किया। महाभागवत वो परम भागवत थे और शासह उन्होंने शासन किया ह यानी था भूतकाल में ऐसा हो गया। और यथा ही सूत्या यथा मतलब जैसा कहा था निश्चय ही सूत्या यानी अपने जन्म के समय। क्योंकि जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ था तो ब्राह्मणों ने जब उनकी कुंडली देखी थी उनको जन्म के ग्रह देखे थे तो उन्होंने कहा था कि ये बहुत ही महान गुणों वाला होगा और बहुत ही सुंदर रीति से शासन करेगा। तो उनकी का अभी
अभिजातक ओवदो यानी जन्म के समय पट्टु ज्योतिषियों ने पहले से ही समादिशन अभिमत व्यक्त किया था। विप्र हे ब्राह्मण, वो शौनक मुनि को कह रहे हैं, महत गुणान, वो महान गुण तथा उसी तरह उसी के अनुसार सत्य, जैसे उन्होंने बोला था कि महान गुण वाला होगा, तो आज वो उनकी भविष्यवाणी सत्य हो गई और वो बहुत ही महान गुण वाले और अपने महान गुणों के द्वारा ये शासन चला रहे थे श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा और उपदेश के अनुसार। अनुवाद देखिए, सुत गोस्वामी ने कहा, हे विद्वान ब्राह्मण, जब महाराज परीक्षित श्रेष्ठ द्विज ब्राह्मणों के आदेशों के अनुसार महान भगवत भक्त के रूप में संसार पर राज्य करने लगे, उन्होंने उन महान गुणों के द्वारा शासन चलाया जिनकी भविष्यवाणी उनके जन्म के समय पट्टु ज्योतिषियों ने की थी। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे, कृपया ध्यान से सुनिएगा। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि महाराज परीक्षित के जन्म के समय पट्टु ज्योतिषी ब्राह्मणों ने उनके कुछ गुणों की भी भविष्यवाणी की थी। श्रीमद् भागवत के होने के कारण महाराज परीक्षित में महाभागवत होने के कारण महाराज परीक्षित में इन सारे गुणों का विकास हो चुका था। वो महाभागवत थे वास्तव में। भक्तों, ये परीक्षित महाराज इतने भाग्यवान हैं कि वह जगह जहाँ पर एक साधारण जीव केवल तड़पता है, केवल दुखी होता है, उस गर्भ में, माता के गर्भ में उन्हें भगवान के दर्शन हुए। वो महाभागवत हैं और इतने महाभागवत हैं तो उनके अंदर वो सारे शुभ गुण होना निश्चित है। और जब जन्म हुआ था उनका, तब ज्योतिषियों ने बताया भी था कि इनके अंदर बहुत सारे गुण होंगे। और यहाँ श्री प्रभुपाद जी आगे बताते कि असली योग्यता भगवत भक्त होना है और धीरे धीरे सभी ग्राह्य गुणों का विकास होता है। यदि हमारे अंदर कृष्ण भक्ति है तो फिर यह सबसे बड़ी योग्यता है। एक व्यक्ति की सबसे बड़ी योग्यता यह है कि वो भगवान श्री कृष्ण का भक्त है। बाकी सारी योग्यताएं पीछे पीछे आएंगी। लेकिन यदि किसी के अंदर ज्ञान है, बल है, सुंदरता है, ऐश्वर्य है, धन है, लेकिन यदि कृष्ण भक्ति नहीं है उसके अंदर, तो सब फिजूल है। इसलिए श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि और धीरे धीरे सभी ग्राह्य गुण उनका विकास होता है। महाराज परीक्षित महाभागवत या प्रथम श्रेणी के भक्त थे जो न केवल भक्ति के विज्ञान में पटु थे अपितु अपने देवी उपदेशों से अन्य को भी भक्त बना सकने में समर्थ थे। अतः महाराज परीक्षित प्रथम श्रेणी के भक्त थे और इस तरह वह बड़े बड़े मुनियों तथा विद्वान ब्राह्मणों से राय लिया करते थे। अब यहाँ पर कितनी सुंदर बात श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये इतने महाभागवत थे, इतने बुद्धिमान थे कि ना केवल स्वयं सही निर्णय लेकर कार्य कर सकते थे बल्कि दूसरों को भी उपदेश देते थे कि जीवन की श्रेणी क्या होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद उनकी विनम्रता देखिए, वो अभी एक छत्र राजा थे, कौरवों के कुल में एकमात्र परीक्षित बचे थे और इतना बड़ा राज्य जिनको मिल गया था, फिर भी वो शुद्ध ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर, उनकी राय लेकर उसके बाद कार्य करते थे। ये नहीं बोलते थे मैं तो खुद कितना बुद्धिमान हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी से राय लेने की, मैं वो व्यक्ति हूँ जिन्होंने गर्भ में साक्षात भगवान के दर्शन किए, मैं तो कोई साधारण व्यक्ति थोड़े हूँ, मैं तो भगवान श्री कृष्ण की बहन का बेटा हूँ, बहन का पोता हूँ, तो मुझे किसी के आदेश की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी के इंस्ट्रक्शंस की जरूरत नहीं है, मैं खुद बुद्धिमान हूँ, मैं कर सकता हूँ। उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहाँ श्री प्रभुपाद जी बताए और यहाँ पर सूत गोस्वामी ने बताया
तत् परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया, द्विजवर्य जो ब्राह्मण लोग हैं उनके उपदेशों के अनुसार वो कार्य करते थे। तो बड़े बड़े मुनियों तथा विद्वान ब्राह्मणों से राय लिया करते थे, जो उन्हें शास्त्रों के द्वारा सलाह दे सके कि राज्य का शासन किस तरह चलाया जाए। वो सब उनको शास्त्रों के अनुसार बताए थे कि किस तरह से ये राज्य में जो ये प्रॉब्लम आ गई है उसको कैसे सॉल्यूशन करें। तो ऐसे महान राजा आजकल के निर्वाचित प्रशासकों से अधिक जिम्मेदार होते थे। आजकल के राजाओं में कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई भी अपना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते, लेकिन पहले जमाने के राजा वो प्रजा का पालन अपनी ड्यूटी समझते थे, क्योंकि वे वैदिक साहित्य में दिए गए महापुरुषों के उपदेशों का पालन करने के कारण उनके प्रति कृतज्ञ रहते थे। वो अपनी मनमाने ढंग से कोई नए रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनाते थे, बल्कि जो शास्त्रों में बताए गए हैं उन्हीं उपदेशों को वो फॉलो करते थे। तब ऐसे व्यावहारिक मूर्खों की आवश्यकता नहीं थी जो नित्य ही नए नए विधान बनाए और अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए उसे बार बार बदल दे। तब शास्त्र के अनुसार कार्य होता था, ऐसे आज नहीं कि ये कभी ये रूल बना दिया तो फिर वापस वो वाला रूल तोड़ दिया, फिर कल दूसरा बनाया तो ये वाला रूल तोड़ दिया, ऐसे नहीं होता था। लेकिन वो व्यावहारिक कार्य करते थे जो कि शास्त्रों के अनुसार होता है, और वो विधि विधान कौन नियोजित करते हैं उसके विषय में श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, ऐसे विधि विधान तो मनु, याज्ञवल्क्य, पराशर तथा अन्य मुक्त मुनियों द्वारा पहले ही स्थापित किए जा चुके थे और उनका प्रचलन सभी युगों तथा सभी स्थानों के लिए उपयुक्त था। अतएव सारे विधि विधान प्रमाणिक थे और किसी त्रुटि या दोष से रहित थे। यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते आजकल के बुद्धिहीन व्यक्ति क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे जिससे प्रजा को या राजा को सही तरह से राज्यवार किस तरह से निभाना है, किस तरह से राज्य के कारोबार में सक्सेस प्राप्त करनी है, किस तरह से अपने राज्य को अच्छे तरीके से चलाना, आजकल की क्या बनाएंगे। आज इनको तो इतनी बुद्धि भी नहीं है कि एक घर को सही तरह से पा सके, एक घर में भी इतनी प्रॉब्लम कर देते हैं, सही तरह से उसको भी सही तरह से नहीं संभाल सकते, तो इतने बड़े राज्य को संभालने के लिए उनकी ये सीमित बुद्धि काम नहीं आती। ये तो मनु महाराज, याज्ञवल्क्य महाराज, पराशर मुनि और अन्य मुक्त आत्माओं ने पहले से ही बता दिया है कि किस तरह से राज्य करना चाहिए। अतएव सारे विधि विधान प्रमाणित थे और किसी त्रुटि और दोष से रहित थे। महाराज परीक्षित जैसे राजाओं की अपनी सलाहकार समिति होती थी और इस समिति के सदस्य या तो ऋषि मुनि होते थे या प्रथम श्रेणी के ब्राह्मण होते थे। सारी जो इनकी समिति होती थी जो उनको सलाह देते थे, जो उनको इंस्ट्रक्शंस देते थे कि इस सिचुएशन में ये कार्य करना चाहिए, तो वो सारे के सारे बुद्धिमान थे, ब्राह्मण होते थे, प्रथम श्रेणी के होते थे और ऋषि मुनि होते थे, तो उनको सही एडवाइस करते थे जिसके कारण वो सही तरह से अपना राज्य कर सके। वे कोई वेतन नहीं लेते थे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। उनको धन का लालच नहीं होता था, ये नहीं सोचते थे कि मैं राजा से धन लूं उसके बाद कार्य करूं, नहीं, वो राजा के साथ सहयोग करते थे और राजा के राजा को प्रसन्न करना चाहते थे। जो राजा इतना सुंदर रीति से प्रशासन कर रहा है तो उसके लिए वो कभी भी नहीं बोलते थे कि भाई इतना मुझे धन चाहिए, ना उन्हें ऐसे वेतन की आवश्यकता ही रहती थी, वो उनको जरूरत ही नहीं होती थी, क्योंकि राजा बिना किसी व्यय के श्रेष्ठ सलाह प्राप्त करता था। वे स्वयं समदर्शी होते थे, सबों के प्रति समदर्शी, चाहे मनुष्य हो या पशु। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आज के इस मॉडर्न सोसाइटी में पशुओं को कोई महत्व नहीं दिया जाता, मार कर काट कर खा लिया जाता है, लेकिन
उस समय की बात यहाँ पर बता रहे, सबों के लिए समदर्शी होते थे, चाहे मनुष्य हो या पशु। वे राजा को ऐसी सलाह नहीं देते थे कि मनुष्य को तो सुरक्षित सुरक्षा प्रदान की जाए और बेचारे पशुओं का वध किया जाए। समिति के सदस्य ना तो मूर्ख होते हैं होते थे और ना ही मूर्खों के प्रतिनिधि होते थे। जो समिति जो इन लोगों ने बनाई थी, जो ब्राह्मणों और ऋषियों पर बनी हुई थी, जो एसोसिएशन उनकी थी, तो उसमें सारे सदस्य बुद्धिमान होते थे, मूर्ख नहीं होते थे और ना ही मूर्ख के प्रतिनिधि होते थे। वो मूर्ख नहीं होते थे प्रति उनका जो राजा होता था वो भी बुद्धिमान होता था और वो सारे भी बुद्धिमान होते थे। वे सब स्वरूप सिद्ध होते थे और वे भलीभांति जानते थे कि किस तरह से राज्य के सारे जीव इस जीवन में तथा अगले जीवन में सुखी रह सके। वो खाली ये नहीं सोचते थे कि इस भौतिक जगत में उनको सुविधाएं प्राप्त हो जाए, आगे चाहे नरक में ही चले जाएं। वो ये देखते थे कि राज्य के सारे जीव जो हैं वो इस जीवन में और अगले जीवन में किस तरह से खुशी रहे। वे खाओ पियो और मौज करो इस आनंदवादी विचारधारा के संपर्क में नहीं थे। वे वास्तविक विचार होते थे और यह बलिभांति जानते थे कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या होता है। वो जानते थे कि मनुष्य जीवन का मतलब ये थोड़ी है खाओ पियो मौज करो। मनुष्य जीवन क्या है? अथासो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा प्राप्त करने के लिए हुआ है। तो अपनी प्रजा को ये बता देते कि किस तरह से तुम्हें इस भौतिक जगत में आनंदित रहना है और किस तरह से तुम्हें मृत्यु के बाद आनंदित होना है। इन सारे प्रतिबंधों के अंतर्गत राजा की सलाहकार समिति सही निर्देशन देती थी और राजा या प्रशासन अधिकारी स्वयं योग्य भगवत भक्त होने के कारण राज्य के कल्याण के लिए उन आदेशों की छानबीन करके उनका पालन करते थे। यानी ये नहीं कि चलो ठीक है बता दिया तो ब्लाइंड ट्रस्ट करते थे, नहीं। वो जो राजा होते थे वो भी योग्य होते थे, भगवत भक्त होते थे और राज्य के कल्याण के लिए उन आदेशों की छानबीन करते थे कि सही है जो मुझे बताया जा रहा है और उनका पालन करते थे। महाराज युधिष्ठिर या परीक्षित के समय का राज्य वास्तव में उन कल्याणकारी राज्य वास्तव में जन कल्याणकारी राज्य होता था। जन कल्याणकारी मतलब जो राजा ये नहीं सोचता था खाली मैं ही आनंदित रहूं, मैं ही सुखी रहूं, समस्त जीवों के जितने भी उनके राज्य में लोग होते थे उनके कल्याण का राज्य होता था। क्योंकि राज्य में कोई भी दुखी नहीं रहता था, चाहे वो मनुष्य हो या पशु। महाराज परीक्षित विश्व के जन कल्याणकारी राज्य के आदर्श राजा थे। तो क्योंकि वो जानते थे कि ये पूरा हस्तिनापुर और कौरव, ये जो कुरु वंश था, वो सारा का सारा राज्य अब महाराज परीक्षित का था। क्योंकि अब और कोई वारिस बचा नहीं, कौरवों का कोई संतान नहीं बचा, पांडव भी चले गए, तो ये सारा का सारा राज्य जो है परीक्षित महाराज का। लेकिन परीक्षित महाराज ये नहीं सोच रहे थे कि राज्य मेरे भोगने के लिए, वे ये सोचते थे कि मैं क्योंकि मैं राजा बनाऊं, अभी मुझे ये देखना है कि प्रजा का कल्याण कैसे हो। तो क्योंकि राजा में कोई उस उनके राज्य में कोई भी दुखी नहीं होता था, क्योंकि राजा स्वयं उनकी केयर करने के लिए आता था, कोई भी दुखी नहीं होता था चाहे वो मनुष्य हो या पशु। महाराज परीक्षित विश्व के जन कल्याणकारी राजा के आदर्श राजा थे। बहुत ही सुंदर वो अपना राज्य चला रहे थे और राज्य का सारा काम ऋषि मुनियों और बुद्धिमान ब्राह्मणों के उपदेशों के अनुसार करते थे। आगे सुत गोस्वामी कहते हैं, स उत्तरस्य तनुयाम उपयेम इरावती जन्म जन्मे जयादिश्चतुर तस्याम उत्पादयत्सुतान स उत्तरस्य तनुयाम उपयेम ईरावती जन्मे जयादि चतुर तस्याम उत्पादयत सुतां।
तो इतना सुंदर राज्य करने के बाद उन परीक्षित महाराज ने विवाह किया। किससे किया? स उत्तरस्य तनुयाम। उत्तर, उत्तर जानते हो आप लोग, जब पहले पांडवों को 12 साल का वनवास हुआ था और 12 साल का वनवास करने के बाद वो एक साल विराट नगर में रहे थे। विराट नगर के राजा, जो विराट राजा थे, उनकी दो संतान थी, एक पुत्र और एक पुत्री। जो पुत्री थी उसका नाम था उत्तरा और जो पुत्र था उसका नाम था उत्तर। तो उत्तर जो था वो उत्तरा यानी जो अभिमन्यु की पत्नी थी उसका भाई था, और अभिमन्यु के पुत्र यानी परीक्षित महाराज ने उत्तर यानी अपने मामू, वो उसकी माता का भाई हुआ ना, तो मामू, हाँ मामू की बेटी के साथ विवाह किया। और यहाँ श्री प्रभुपाद जी बताएंगे कि गोत्र अलग होता है, तो ये मामू और पुप्पो के बच्चों में आपस में विवाह संभव होता है, जैसे अर्जुन ने भी किया था ना। अभी वासुदेव की सिस्टर थी कुंती महारानी, और इस तरह से अर्जुन के मामू थे वासुदेव, और वासुदेव की पुत्री सुभद्रा से उन्होंने विवाह किया था, तो ऐसे ही उनके पुत्र ने भी किया। स उत्तरस्य तनुयाम उपयेम इरावती, और उसका नाम था इरावती, उसके साथ उपयेमे यानी विवाह किया। और उनकी संतानें हुई जन्मेजयादीश चतुरा, जन्मेजय और टोटल चार उनके पुत्र हुए, जिनमें से एक मुख्य नाम बता रहे हैं जन्मेजय। तस्याम उत्पादयत सुतान, इस तरह जन्मेजय आदि उनके पुत्र उत्पन्न हुए। अनुवाद देखिए, राजा परीक्षित ने राजा उत्तरा की पुत्री इरावती के साथ विवाह किया और उनसे उन्हें महाराज जन्मेजय आदि चार पुत्र उत्पन्न हुए। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय हो। महाराज उत्तर विराट के पुत्र तथा महाराज परीक्षित के मामा थे। इरावती महाराज उत्तर की पुत्री होने से महाराज परीक्षित की ममेरी बहन थी, लेकिन यदि ममेरे भाइयों तथा बहनों का गोत्र एक ना हो तो उन्हें विवाह करने की अनुमति थी। विवाह की वैदिक पद्धति में गोत्र या परिवार पर बल था। अर्जुन ने भी सुभद्रा से विवाह किया था, यद्यपि वह उनका ममेरा, वह उनकी ममेरी बहन लगती थी। तो ये श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये ममेरी बहन के साथ विवाह करना गलत नहीं है अगर गोत्र अलग हो तो। तो आगे जन्मेजय, क्योंकि बताया जन्मेजय दायस्य चतुरा, तो जन्मेजय के विषय में श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे, जो उनके परीक्षित महाराज के प्रथम पुत्र थे। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं राजर्षियों में से एक तथा महाराज परीक्षित के विख्यात पुत्र जन्मेजय, उनकी माता का नाम इरावती तथा कुछ लोगों के अनुसार माद्रवती था। महाराज जन्मेजय के दो पुत्र हुए जिनके नाम थे ज्ञातानीक तथा शंकुकर्ण। उन्होंने कुरुक्षेत्र तीर्थ स्थल पर अनेक यज्ञ किए। उनके तीन छोटे भाइयों ने के नाम थे श्रुतसेन, उग्रसेन तथा भीमसेन। किसके नाम थे? जो यहाँ पर परीक्षित महाराज के चार पुत्र बताए गए ना, जन्मेजय आदि चतुरः, चार पुत्र थे। एक का नाम तो जन्मेजय था और तीन दूसरे थे ना, श्रुतसेन, उग्रसेन तथा भीमसेन। ये थे भीमसेन द्वितीय, एक भीमसेन पहले, नंबर वन भीमसेन वो था जो पांडवों का बेटा, और ये सेकेंड नंबर का। तो उन्होंने तक्षला यानी अजंता पर आक्रमण किया और अपने महान पिता महाराज परीक्षित को दिए गए अवैध शाप का बदला लेने का निश्चय किया। उन्होंने क्या किया था, अब महाराज परीक्षित को श्राप जो मिलेगा ना उसके बाद की बात बता रहे हैं कि उस श्राप को का बदला लेने के लिए उन्होंने निश्चय किया। उन्होंने अपने पिता को काटने वाले तक्षस सहित सर्पों की संपूर्ण जाति का विनष्ट करने के लिए सर्प यज्ञ किया। उन्होंने ऐसा यज्ञ किया था कि वो यज्ञ कर रहे थे और संसार के जितने भी सांप थे ना वो आग यज्ञ कुंड में चले मरने आ रहे थे। और उन्होंने ये यज्ञ इसीलिए किया था ताकि क्योंकि उनके पिताजी को सर्प ने डंसा था ना, तो सारे सर्पों को मारने के लिए। किंतु अनेक प्रभावशाली देवताओं तथा मुनियों के आग्रह पर उन्होंने संपूर्ण सर्प जाति को विनष्ट करने का अपना निर्णय बदलना पड़ा। सब ने आकर उन्हें बोला कि ऐसे आप किसी एक सर्प के दोष के कारण आप सारे सर्पों को क्यों मार रहे हो, इस तरह से तो सब निर्दोषों की हत्या हो रही है ना। दूसरे सारे सर्पों ने तो आपके पिताजी को नहीं डसा ना खाली तक्षक सर्प ने डसा है, तो उस एक की बलि देनी चाहिए ना, आपको सबकी तो नहीं देनी चाहिए। तो सबने इनको बहुत ज्यादा समझाया तो फिर उन्होंने अपना निर्णय बदला। किन्तु यज्ञ बंद करने के बावजूद उन्होंने यज्ञ से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को समुचित पुरस्कार दिया। इस उत्सव में महामुनि व्यासदेव भी उपस्थित थे और उन्होंने ही राजा के समक्ष कुरुक्षेत्र युद्ध का सारा वृत्तांत सुनाया। बाद में व्यासदेव की आज्ञा से उनके शिष्य वैशंपायन ने राजा को महाभारत सुनाई। वे अपने पिता के असामायिक निधन से अत्यधिक दुखी थे और उन्हें दोबारा देखने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते थे। अतएव उन्होंने महामुनि व्यासदेव से अपनी इच्छा व्यक्त की। व्यासदेव ने उनकी इच्छा पूरी की। उनके पिता उनके समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने अपने पिता एवं व्यासदेव का पूजन बड़े ही आदर तथा धूमधाम से किया। उन्होंने इस यज्ञ में उपस्थित समस्त ब्राह्मणों को अत्यंत ही प्रसन्न होकर मुक्त हस्त दान दिया। श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्रील प्रभुपाद जी ने जन्मेजय के विषय में बहुत सुंदर बताया, क्योंकि शास्त्रों में सादा उनके विषय में आता है। ये यज्ञ जो था सर्प को मारने वाला, ये भी जन्मेजय जी ने ही किया था। और उस यज्ञ में वेद व्यास भी आए थे, और वेद व्यास क्योंकि वो जानते थे कि ये उस समय भी थे जब मेरे मतलब अभी जन्मेजय ने तो युधिष्ठिर इत्यादि को नहीं देखा था ना, वो तो परीक्षित के राज देखकर चले गए थे। लेकिन जन्मेजय को जब वेद व्यास ने कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ था उसके विषय में सुनाया, तो सारी चीजें बताने के टाइम पर उन्होंने अभिमन्यु की मृत्यु के विषय में बताया, और तब उनको बहुत दुख हुआ अभिमन्यु के विषय में जब उन्होंने सुना तो। और फिर वेद व्यास के एक शिष्य थे जिनका नाम था वैशंपायन, उन्होंने राजा को महाभारत सुनाई, जो पूरी महाभारत की हिस्ट्री थी वो सुनाई। लेकिन जन्मेजय जो थे वो बहुत दुखी रहते थे, क्योंकि उनके पिता की यूं अचानक से, परीक्षित महाराज अभी तक यंग थे और उनकी मृत्यु हो गई थी, उनको श्राप मिला था, तो बहुत दुखी रहते थे अपने पिता के इस तरह से निधन से। तो उनकी इच्छा होती थी कि मैं अपने पिता के एक बार फिर से दर्शन करूं। अतएव उन्होंने महामुनि वेद व्यास से कहा कि मुझे अपने पिताजी के दर्शन करने। वेद व्यास ही त्रिकालदर्शी हैं और भगवान की शक्ति आवेश अवतार हैं। उन्होंने अपनी शक्ति से उन्हें पुनः अपने पिताजी के दर्शन कराए और उन्होंने अपने पिताजी की और वेद व्यास जी का बहुत ही आदर सम्मान किया, बहुत सुंदर पूजा की उनकी। और उस समय यज्ञ में उपस्थित समस्त ब्राह्मणों को बहुत दान दिया, हस्तमोक्ष मतलब बहुत ही खुले हाथ से उनको दान दिया, सबको प्रसन्न किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं।